अर्पा रेडियो के कार्यक्रम भारतीय प्राचीन मनीषा में भारत को चार खूंटों में किसने बांधा, लीजिए सुनिए इस कार्यक्रम में वर्चस्व श्री दिनेश कुमार के स्वर में भाग 10।
वहां से वो वापस आते हैं महिष्मती, उभय भारती देवी को कहते हैं मां बैठो शास्त्रार्थ करो। शास्त्रार्थ करते हैं, कुछ ही समय में उभय भारती समर्पण करती है और अब चलने का समय है। क्यों? क्योंकि अब दोनों समर्पित हैं, उभय भारती और मंडन मिश्र दोनों पीछे पीछे आदि गुरु पृथ्वीधरा और पद्मपादाचार्य ये आगे आगे चलते हैं और यहां से उनकी यात्रा आरंभ होकर के महिष्मती से श्री सैलम होते हुए तिरुपति पहुंचती है। श्री सैलम में क्योंकि वैदिक संस्कृति का लोप हो चुका है, वैदिक संस्कृति वेद मंत्र गायब हो गए और क्या होता है ऐसे काल में, अंधकार युग होता है, तांत्रिक बलि प्रथा इत्यादि। वहां पर एक राजा था श्री सैलम में जिसका नाम था उग्र भैरव, कपालिक था और अपने आसपास लोगों को प्रभाव में लेकर के उसने कपालिक क्रियाएं कर करके लोगों को लूटता था। जैसे ये वहां पहुंचे इन्होंने अपने कार्यक्रम आयोजित किए, ज्ञान सभाएं की। उग्र भैरव को बड़ा गुस्सा आया, वो मारने के लिए तलवार लेकर के शंकराचार्य जी पर टूटता है। पद्मपादाचार्य उसके हाथ से तलवार छीन करके उसकी गर्दन काट देता है और जितने भी उनके शिष्य थे वो सारे के सारे आदि गुरु को समर्पित हो जाते हैं। श्री सैलम से तिरुपति वो पहुंचते हैं। तिरुपति आसपास के राजा वहां आते हैं जिसमें मुख्यतः एक बड़ा समर्पित राजा था जिसका नाम था राजा सुधानव। वो अपनी सेना के साथ वहां आया था। एक सत्य यहां पर और भी है जिसे मुख्य रूप से तिरुपति में स्वीकारा नहीं जाता है। क्यों मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये बात मैंने स्वामी जी की पुस्तक में पढ़ी है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने तिरुपति जी में धन आकर्षण यंत्र की स्थापना की थी। धन आकर्षण यंत्र, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉस्मिक पावर्स, अनेकों प्रकार के ब्रह्मांड की शक्तियों के लिए हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी बनाते हैं, एक्सप्रेशन भी बनाते हैं, और धन आकर्षण यंत्र की स्थापना तिरुपति में हुई ऐसा ऑन रिकॉर्ड कई ग्रंथों में है। हालांकि तिरुपति में जो एक टाइम्स वीक नाम से एक पत्रिका है जिन्होंने सन 2011 में द एंटायर रूट प्लान ऑफ आदिगुरु शंकराचार्य पर रिसर्च की थी, वो पूरी कॉपी मेरे पास है, उन्होंने इस धन आकर्षण यंत्र के वहां होने को अस्वीकारा है क्योंकि उन्होंने जब पूछा तो वहां की व्यवस्था ने कहा यहां नहीं है। इसका क्या कारण है मैं नहीं जानता, हो सकता है इसका कारण यह भी हो कि कहीं कोई इसी को उठा के ना ले जाए। आदि गुरु शंकराचार्य का धनाकर्षण यंत्र है, वर्षा की तरह सोना बरसता है, इसी को ले चलो, ऐसा हुआ होगा। जैसे ही तिरुपति से आगे की यात्रा आगे बढ़ती है, सुधानव कहते हैं कि महाराज बीच में कपालिकों का और भी क्षेत्र आता है, मेरी आपसे एक विनती है, मेरी सेना की टुकड़ी आप साथ ले लीजिए ताकि आपको आगे जाने में कठिनाई ना हो। आपको आगे जाना कहां है? आदि गुरु कहते हैं मां का दायित्व पूरा करने का समय आ गया है, मुझे अब यहां से कलड़ी जाना होगा। और साथ ही मंडन मिश्र को और उभय भारती को कहते हैं आप श्रृंगेरी पहुंचिए, मैं एक महीने के भीतर अपने गांव मां का दायित्व पूरा करके आपके पास श्रृंगेरी मिलता हूं। यह कहकर अपने उस छोटी सी सेना को साथ लेकर के तिरुपति से कलड़ी वो चल निकलते हैं 10,000 किलोमीटर। आदि गुरु के साथ उनके बहुत सारे शिष्य इस समय नहीं हैं, कलड़ी वो लगभग अपने एकांत के स्वरूप में ही पहुंचते हैं। अब यहां आकर के समाज के लिए एक बहुत बड़ा शिक्षण है, जिस ब्रह्म ऋषि ने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के प्रति न्यौछावर कर दिया, उसकी मां का हालचाल पूछने वाला कोई रिश्तेदार गांव का व्यक्ति नहीं आया, केवल एक व्यक्ति जो अगल बगल के नारायण और विश्वनाथ दो लोग, केवल वो दो लोग उनकी मां की सेवा श्रुषा करते हैं, हालचाल पूछने आते हैं। जैसे ही गांव में प्रवेश करते हैं सीधा अपने घर पहुंचते हैं, मां को प्रणाम करते हैं, मां लगभग मरणासन्न है, लड़के को देख के खुश होती है, पहला सवाल, लाइक एनी मदर वुल आस्क चाइल्ड, पहला सवाल, तुझे भिक्षा टाइम पे मिल जाती है? माने खाने को टाइम पे मिल जाता है क्या? हाँ मिल जाती। तेरा स्वास्थ्य ठीक है? ठीक है। तेरे बारे में सुनती बहुत हूं बेटा, आसपास के बारे में सूचनाएं देती है कि ये नहीं वो नहीं, जैसा माँ को अनुभव हुआ। और माँ से वो कहते हैं, माँ आप चिंता ना करो, आज हम दोनों इकट्ठे बैठ के भोजन करेंगे। माँ के जो गंदे वस्त्र थे, सन्यासी होते हुए भी माँ के वस्त्र धोते हैं पहले, उनका बिस्तर ठीक करते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं। माँ पूछती है कि बेटा तुझे बहुत ज्ञान है, अब मैं जाने वाली हूं, क्या होगा? माँ तुम कहां जाओगी, तुम कहीं नहीं जा रही हो, जाएगा तो तुम्हारा शरीर जाएगा, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम तो अब कृष्ण भगवान के साथ एक रूप होने वाली हो, एकाकार होने वाली हो, तुम कहीं नहीं जा रही हो। माँ को समझाते हैं और माँ कुछ ही पलों में अपने प्राण छोड़ देती है। यहां एक दृश्य खड़ा होता है। दृश्य क्या खड़ा होता है? जैसे ही अब मां का अंतिम संस्कार करने की तैयारी होती है, अब गांव बाहर आना शुरू हो जाता है। ऐसे कैसे, तुम तो सन्यासी हो, तुमने तो अपना यज्ञोपवीत उतार के फेंक दिया, तुम कैसे संस्कार कर सकते हो, तुम तो श्राद्ध भी नहीं कर सकते, तुम संस्कार कैसे करोगे? अच्छा, तो कहते मैं नहीं करूंगा, तो कोई और कर देगा। कोई और कैसे करेगा, कौन बैठेगा श्राद्ध पे, हम किसी को नहीं करने देंगे। ऐसे कैसे नहीं करने दोगे, हम कर लेंगे, हम तुम्हें यहां शमशान में भी नहीं जाने देंगे, तुम शमशान में भी चिता नहीं ले जा सकते। अच्छा, हम तुम्हें जलाने के लिए लकड़ियां भी नहीं लेने देंगे। दिस इज हिस्ट्री, जिसने संपूर्ण जीवन इस राष्ट्र के लिए समर्पित किया, इस राष्ट्र को चार खूंटों में गूंथ दिया, इस सनातन संस्कृति की रक्षा की, पुनरुत्थान किया, उसे अपनी मां की चिता जलाने की अनुमति नहीं दी गई। उसे अपने ही घर के पिछवाड़े में अपनी मां की चिता सजानी पड़ी। न देखता हूं मुझे यहां कौन रोकता है। गांव के जो शूद्र थे वो बाहर आए और आकर के लकड़ियां लाए। जो दो दोस्त उनके साथ थे, जो उनके मित्र थे या जो भी थे, नंबूदरी ब्राह्मण थे, उन्होंने क्षमा याचना की, हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं, पता नहीं उन्हें क्यों समझ नहीं आती है, ऐसा क्यों कर रहे हैं। आदि गुरु शंकराचार्य अपने दो सहयोगियों की सहायता से अपने ही घर के पिछवाड़े में अपनी मां की चिता जलाते हैं। वहां आज भी एक स्तंभ उनकी स्मृति में स्थापित है। कितना बड़ा त्याग, कितना बड़ा तप ऐसे लोगों को देना पड़ता है, जो आते ही केवल तिल तिल करके इस समाज को आलोकित करने के लिए है, लेकिन इनके पास खोने को कुछ नहीं है।